उपोद्घात महाकवि कालिदास, कवि कुल गुरु कालिदास भारत के ही नहीं अपितु विश्व के स्वनाम धन्य श्रेष्ठ महाकवि और उत्तम नाटककारों में परिगणित हैं। खंड काव्य, महाकाव्य और नाटक सर्वत्र ही उनकी कवित्व शक्ति पूर्ण रूप से परिपक्व दृष्टिगोचर हो रही है। इस प्रकार काव्य के तीनों विभागों में किसी देश का कोई भी कवि उनकी बराबरी नहीं कर सका। यह बात निर्विवाद है कि प्रकृति की मनोरम मूर्ति को प्रतिफलित करने में और अपने प्रबंधों के पात्रों के चरित्रों का असाधारण चित्रण करने में महाकवि अद्वितीय हैं। इस विषय में कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता है। उनकी लेखनी से, उनकी कृतियों से भारतवर्ष और आर्य जाति गौरवान्वित है। समस्त विश्व में आर्य संस्कृति परम श्रद्धा और भक्ति की आश्रय बन गई है। आर्य संस्कृति की उदात्तता के प्रदर्शन में महाकवि का सर्वश्रेष्ठ स्थान है। उन्होंने सत्य, शिव और सौंदर्य की जो पूर्णता दर्शाई है वह वर्णनातीत है। बहिर्जगत और अंतर जगत का चरम प्रदर्शन करना ही महाकवि का लक्ष्य रहा है, इसलिए उन पर न्यूनता का आरोपण हो ही नहीं सकता है। सहस्त्र रश्मि की किरणों से जैसे तिमिर का आविर्भाव नहीं होता है, उसी तरह कालिदास की रचनाओं से अशिव तत्व का उद्भासन नहीं हो सकता है। उपमा कालिदास से यह कथन उपलक्षण मात्र है। वैदर्भी रीति, प्रसाद गुण और उपमा अलंकार, इनमें महाकवि अप्रतिद्वंदी हैं। इस विषय में कुछ भी मतभेद नहीं है। नीचे सिवाय अर्थांतरण न्यास, उत्प्रेक्षा, स्वभावोक्ति और रूपक आदि अलंकारों का प्रदर्शन करने में भी कालिदास अपनी तानी नहीं रखते हैं। इनकी रचनाओं में पर्याप्त रूप से अर्थ की प्रधानता होने से ध्वनि आविर्भूत होकर सहृदय जनों को मुग्ध कर देती है। साहित्य के भाव और कला, ये दोनों ही पक्ष कालिदास की लेखनी से समुज्ज्वल रूप से निकल उठे हैं। इनकी रचनाओं में पर्याप्त रूप से व्यंग अर्थ की प्रधानता होने से ध्वनि आविर्भूत होकर सहृदय जनों को मुग्ध कर देती है। साहित्य के भाव और कला, ये दोनों ही पक्ष कालिदास की लेखनी से समुज्ज्वल रूप में निखर उठे हैं। इनकी फटकती हुई सूक्तियाँ हृदय के अभ्यंतर प्रदेश में प्रवेश कर जाती हैं, जिनसे अनिर्वचनीय आनंद की उपलब्धि होती है। महाकवि की संपूर्ण विशेषताओं पर प्रकाश डालने के लिए एक स्वतंत्र बृहद ग्रंथ की आवश्यकता है। इस कारण हम अभी सविस्तर वर्णन नहीं करेंगे। हमें बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ सकता है कि ऐसे महान विश्व कवि के विषय में हमें जो जानकारी है वह अत्यंत परिमित है। भारतवर्ष आध्यात्मवादी राष्ट्र है, इसलिए यहाँ के विद्वानों में लोकेशणा का भाव बहुत ही न्यून रहा है। इसी से यहाँ के बहुत से महानुभावों का परिचय उनके ग्रंथों से नहीं पाया जाता है। बाणभट्ट, कल्लड़ और माधवाचार्य आदि कतिपय विद्वानों को छोड़कर अनेकों भारतीय विद्वानों का परिचय जनश्रुति पर अवलंबित है, जो कि पूर्ण रूप में प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती है। महाकवि कालिदास में आत्मश्लाघा का लेश मात्र भी नहीं था। इस बात का परिचय तथा उनकी नम्रता की पराकाष्ठा रघुवंश के अधः स्थित श्लोकों से जानी जाती है। क्वः सूर्य प्रभो वंशः, क्वः चाल्प विषया मतिः, तितीर्ष दुस्तरम् मोहात् दुडुपेनास्मि सागरम्। मंदः कविशः प्रार्थी, गमिष्याम्युपहास्यताम्। पांशुलब्धे फले लोभात् दुद्बाहुरिव वामनः, सगुणां मन्वयं वक्षे तनुवाग्विभवोऽपि सन्, तद्गुणः कर्णमागत्य चापलाय प्रचोदः। ऐसी किं वदंती है कि कालिदास पहले बहुत ही मूर्ख थे। राजा सरदानंद की विद्योत्तमा नाम की एक कुमारी विदुषी तथा परम सुंदरी थी। उसे अपनी विद्या का बड़ा अभिमान था। इस कारण जो मुझे शास्त्रार्थ में परास्त करेगा उसी के साथ मैं विवाह करूंगी, ऐसी शर्त उसने की थी। बहुतेरे विद्वान उससे शास्त्रार्थ करने आए, परंतु विद्योत्तमा की विद्वता से सबके सब परास्त हो गए थे। ईर्ष्या के कारण उन लोगों ने राजकुमारी का एक महामूर्ख के साथ विवाह करने के लिए षड्यंत्र रचने का विचार किया। वैसे मूर्ख के अन्वेषण के प्रसंग में उन लोगों ने किसी पेड़ की ढाल पर बैठकर उसी को काटने के लिए तत्पर एक मूर्ख को देखा। राजकुमारी का गर्व भंग कराने के लिए उसे उपयुक्त पात्र समझकर उन लोगों ने नीचे उतरने के लिए प्रार्थना कर उस मूर्ख से कहा, हम लोग एक परम सुंदरी राजकुमारी के साथ तुम्हारा विवाह करा देंगे और अपने गुरु के तौर पर तुम्हारा परिचय देंगे, परंतु तुम कुछ मत बोलना। आखिर विद्वान लोग उस मूर्ख को साथ में लेकर राजकुमारी के पास गए और कहा कि ये हमारे गुरुदेव सकल शास्त्रों के पारदर्शी विद्वान हैं, परंतु आपने अभी मौन व्रत लिया है। तब राजकुमारी विद्युतमा ने ईश्वर एक है इस अभिप्राय से एक अंगुली ऊपर उठा ली। उस मूर्ख ने यह हमारी एक आंख फोड़ने का संकेत कर रही है ऐसा समझकर हम तुम्हारी दोनों आंख फोड़ देंगे इस अभिप्राय से दो उंगलियां ऊपर उठा ली। इस पर उन पंडितों ने समष्टि रूप से ऐसे तर्क वितर्क किए कि जिनसे राजकुमारी को हार माननी पड़ी। ऐसे ही प्रसंग को लक्ष्य कर महाकवि माघ ने शिष्यपालवद महाकाव्य में बलराम जी के मुख से यह श्लोक कहलाया है, विरोधी वचसो मूकान वागीशान अपि कुर्वरो जडानप्य अनुलोमार्थान प्रवाचः कृतिना गिरह। अर्थात विद्वान लोग अपने विरोधी वागीशों को भी मूक और अनुकूल मूर्खों को भी महान वक्ता बनाते हैं। फलतः पंडितों के सामूहिक तर्क से हार मानकर राजकुमारी विद्युतमा को उस मूर्ख से विवाह करना पड़ा। सुहागरात के समय एक ऊंट की चिल्लाहट सुनाई पड़ी। राजकुमारी ने अपने पति से किमिदम ऐसा पूछा, तब उस मूर्ख ने शुद्ध उच्चारण की असमर्थता से उट्र ऐसा उच्चारण किया। राजकुमारी पंडितों का षड्यंत्र पूर्ण ठाठ जानकर अपने दुर्भाग्य पर फूट फूट कर रोने लगी और उसने अपने पति को अपमान के साथ भवन से बाहर निकाल दिया। उस मूर्ख को अपनी पत्नी के व्यवहार से इतना दुख हुआ कि काली मंदिर में जाकर आत्महत्या करने के लिए उतारू हो गया। उसके जन्मांतर के अदृष्ट की प्रबलता से भगवती काली ने प्रसन्न होकर ब्रह्मरू ही ऐसा कहा, उस मूर्ख ने कवित्वपूर्ण विद्या की सिद्धि के लिए प्रार्थना की। भगवती के एवमस्तु कहने पर वह तत्क्षण निखिल शास्त्र निष्णात होकर फिर अपनी पत्नी के पास गया। भवन का द्वार बंद था, तब उसने अनावृतम कपाटम द्वारम देही ऐसा कहा। राजकुमारी को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, अस्ति कश्चित् वाग् विशेषः, जगत में क्या कुछ वचन की विशेषता है। पति ने अपनी पत्नी के प्रश्नात्मक वाक्य के तीन पदों को लेकर तीन काव्यों का निर्माण किया, जैसे कि अस्ति इस क्रियापद को लेकर अस्तुत्तरस्याम दिश देवतात्मा इस प्रारब्ध चरण से युक्त कुमार संभव महाकाव्य, कश्चित इन पद को लेकर कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः ऐसे प्रारंभिक चरण से संपन्न मेघदूत नामक खंड काव्य, और वाग इस पद को लेकर वागर्था विरु संपृक्तौ ऐसे आदि चरण से भूषित रघुवंश महाकाव्य बना डाला। कहना नहीं पड़ेगा कि राजकुमारी विद्युतमा के पूर्वालिखित मूर्ख पति ही भगवती काली के अनुग्रह से कालिदास नाम वाले जगत विख्यात महाकवि हो गए। यह किंवदंती बहुत ही प्रसिद्ध है। कोई यह भी बात कहते हैं, कालिदास 500 ईस्वी के वर्तमान सिंघल विकट में लंका के महाराज कुमारदास आश्रित थे और वे किसी वेश्या के घर में मारे गए। कालिदास की रचनाओं का अध्ययन करने पर इस किंवदंती की निस्सारता प्रतीत होती है। सत्य शिव और सौंदर्य का अद्वितीय प्रतिष्ठापक आदर्शवादी सरस्वती के वरद पुत्र महाकवि कालिदास पर दुष्चरित्रता का द्योतन करने वाली ऐसी किंवदंती आस्या सिद्धि से स्वयं खंडित हो जाती है। कालिदास का काल निर्णय। कालिदास के समय के विषय में सामान्यतः चार मत प्रचलित हैं। विकट में एक, धारा नगरी के अधीश्वर भोज का समय 1005 से 1054 जकड़ में ख्रिस्ट की 11वीं शताब्दी। 2. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और समुद्रगुप्त का राज्यकाल जकड़ में 4वीं शताब्दी के शेष भाग से 5वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक। 3. प्रख्यात ज्योतिषी वाराह मिहिर का समय जकड़ में 6वीं शताब्दी। 4. 9 संवत्सर के प्रवर्तक विक्रमादित्य का समय जकड़ में ख्रीस्ट से 57 वर्ष पूर्व। अब हम क्रम पूर्वक पूर्वोक्त चारों मतों की आलोचना करते हैं। 1. वल्लाल सेन नामक विद्वान ने महाकवि कालिदास को धाराधीश्वर भोजराज सभा पंडित माना है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस ग्रंथ का कुछ भी मूल्य नहीं है। वल्लाल पंडित स्वयंभू महाराज भोज के समकालिक नहीं थे। उन्होंने सुनी सुनाई बातों का संकलन कर इस ग्रंथ की रचना की थी, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि इस ग्रंथ में भिन्न भिन्न समय के भारव, दंडी, माघ आदि कवियों को भी भोज का सभासद बना डाला है, जो कि सर्वथा असंगत है। हम अन्य विवादों में न पढ़कर प्रकृत विषय में प्रकाश डालकर आगे बढ़ते हैं। 11वीं शताब्दी के भोजराज के सभासद कालिदास होते तो 6वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विद्यमान राजा हर्षवर्धन के आश्रित कविवर बाणभट्ट अपनी स्तुति हर्षचरित में निर्गतासुनवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रेतिर्मधुर सांद्राशु मंजरिष्यो जायते, इस श्लोक से कालिदास की सूक्तियों की कैसे प्रशंसा करते। वल्लाल सेन भोज के समकालिक नहीं थे, वे 16वीं शताब्दी थे। उन्होंने स्वयं अन्वेषणात्मक कार्य में व्यापृत न होकर अप्रामाणिक बात लिखी है। भोज के समय में कालिदास उपाधि वाले परिमल व पद्मगुप्त नाम के कवि ही भ्रमवश महाकवि कालिदास मान लिए गए हैं। इस प्रकार भोज के समय में अभिज्ञान, शाकुंतल आदि नाटकों के कर्ता महाकवि कालिदास की स्थिति निर्मूल प्रतीत होती है। 2. कुछ विद्वानों का कहना है कि कालिदास गुप्त वंश के राजा के आश्रित थे। यूरोप के बहुत से प्रवीण विद्वान इस मत का प्रतिपादन करते हैं। प्रोफेसर लासिन, कर्नल विलफोर्ड, जेम्स ग्रिनसेप, प्रोफेसर मैकडोनल, प्रोफेसर कीथ और विंसेंट स्मिथ आदि विद्वानों का कहना है कि गुप्त वंश के राजाओं के समय भारत का साहित्य सूर्य मध्यान के आकाश को उद्भासित कर रहा था। इसी सुख और समृद्धि के समय में महाकवि कालिदास आविर्भूत हुए थे। उनकी रचना में जो शांतिमय तृप्ति और आनंद की धारा प्रवाहित हुई थी, वह भारत के उसी सौभाग्य समय में संभव हो सकती है। प्रोफेसर विंसेंट स्मिथ कहते हैं कि जिस बौद्ध धर्म के प्रभाव से भारत के साथ चीन की घनिष्ठता होकर दोनों महादेशों की सभ्यताओं के सम्मिश्रण से जो एक नवीन सभ्यता और नवीन युग का उन्मेष हो गया था, उस पूर्ण विकास गुप्त वंश के राज्यकाल से ही हुआ है। उसी गुप्त वंश के राज्यकाल में कालिदास आविर्भूत हुए हैं। कालिदास चीन की दान संपत्ति को भूल नहीं सके हैं। उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतल में चीनांशुकमिव केतो जकड़ में 36 इस उक्ति के द्वारा उस दान संपत्ति को ध्वनित किया है। इसी प्रकार कीथ आदि विद्वानों ने कहा है कि महाकवि कालिदास ने अपने काव्य में कई जगह प्रच्छन्न भाव से आश्रयदाता गुप्त वंश के राजा की प्रशंसा और संकेत का प्रवर्तन किया है। उदाहरण के तौर पर रघुवंश में इंदुमती के स्वयंवर प्रसंग में सुनंदा सबसे पहले मगधेश्वर की प्रशंसा करती हैं। कामम निपाह संतु सहस्त्रसो न्ये राजन्वती माहुरनेन भूमिम नक्षत्र तारा ग्रह संकुलापि ज्योतिष्मती चंद्रमसैव रात्रि। रघुवंश जगण में 6:22। कहना नहीं पड़ेगा कि गुप्त वंश के राजा मगध पर शासन करते थे। इसी तरह रघुवंश के आसमुद्रक्षिति शानाम इस श्लोक में महाकवि ने समुद्रगुप्त के राज्य विस्तार का संकेत किया है। ज्योतिषमती चंद्रमसैव रात्रि जकट में 6:22 इस श्लोकांश में महाकवि ने अपने आश्रयदाता चंद्रगुप्त का कुमार कल्पम सुसुवे कुमारम जकड़ में 5:36 रघुवंश के इस श्लोकांश में महाकवि चंद्रगुप्त के पुत्र कुमार गुप्त का संकेत किया है। इस प्रकार रघु के दिग्विजय में और मालविकाग्नि मित्र नाटक में अश्वमेध यज्ञ में समुद्रगुप्त के कार्यकलाप की प्रतिच्छाया दिखाई पड़ती है। उनका यह भी कहना है कि कुमार संभव कुमार गुप्त के जन्म के उपलक्ष्य में रचा गया है। ऐतिहासिक प्रमाणों की विवेचना करते हुए उन्होंने निम्नलिखित प्रमाणों का उल्लेख किया है। अश्वघोष कनिष्क के राज्यकाल में विद्यमान थे। कनिष्क संभवतः ख्रिस्ट की प्रथम व द्वितीय शताब्दी के प्रारंभ में पंजाब में राज्य करते थे। अश्वघोष और कालिदास की रचनाओं में कतिपय स्थलों में बहुत सादृश्य देखा जाता है। नीचे कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। वातायनेभ्यस्तु विनिष्ठतानि परम्परायासित कुंडलानि त्रीणाविरेजुर्मुख पंकजानि तक्तानि हरमेश्व पंकजानि। बुद्ध चरित विकट में 3:19। राजकुमार सिद्धार्थ ने वन विहार के लिए राजपथ में गमन किया था। उस समय उनको देखने के लिए उत्कंठित स्त्रियों के मुख का वर्णन बुद्ध चरित ने इस प्रकार अश्वघोष ने किया है। इसी प्रकार महाकवि कालिदास ने रघुवंश के स्वयंवर के लिए आए हुए अज को देखने के लिए स्त्रियों का वर्णन किया है। सहसा मुखे रासवगंध गर्भैर व्याप्तांतरा सांद्र कुतूहलानाम बिलोल नेत्र भ्रमरैर गवाक्षा सहस्त्र पत्राभरणा इवासन। रघुवंश विकर्ण में 7:11। अब बुद्ध चरित्र में सिद्धार्थ के जन्म का वर्णन देखिए। वाता बभु स्पर्श मुखा मनोज्ञा दिव्यानि वासस्य वपातयन्तः सूर्यः स एवाभ्यधिकं चकासे जज्ज्वाल सौव्यार चिरनीरितोग्निः। बुद्ध चरित विकट में 1:22। इसी प्रकार कालिदास ने कुमार संभव में कुमार के जन्म का वर्णन किया है। वाता बभु सौख्यकरः प्रसेदु आशा विधूम्रा कुतभुक् द्विदीपे जलान्य भुवन विमलानि तत्रोत् सवे अंतरिक्षम प्रसाद सद्यः। व्याकरण में 11:37। बुद्ध चरित में बुद्ध को तपश्चर्या से विरत करने के लिए तत्पर मार को आकाशावस्थित विशिष्ट भूत कहता है। मोघम स्वम न रहसि मार कर्तुम इष्टात्मता मुत्सृज गच्छ सर्वम नैष त्वया कंपयितुम हि शक्यो महागिरिर्मेरुरिवा नलेन। विकट में बुद्ध चरित विकट में 16:57। इसी प्रकार रघुवंश में नंदिनी को बचाने के लिए उद्यत महाराज दिलीप को माया ने भावित सिंह कहता है। अलम महीपाल सस्रमेण संयुक्तमप्यस्त्रमितो वृथा स्यात् न पादपोन्मूलन शक्तिरंगः शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य। सौंदर्य नंद में नंद को बुद्ध के गौरव और प्रिया सुंदरी के अनुराग से जो दुविधा हुई थी उसे समगौरवम बुद्धगतम चकर्ष भार्या अनुरागः पुनराचकर्ष सोस्निश्यान्नापि ययौनतस्थौ तरस्तरंगेश्वराजहंस। जकट में 4:42। ऐसे ही कालिदास के कुमार संभव में ब्रह्मचारी के वेश वाले शिवजी ने जब अपना स्वरूप प्रदर्शन कर गमनोन्मुख पार्वती का ग्रहण किया उस समय उनको दुविधा। तम भीक्ष बे पथुमती सरसांग यष्टि निक्षेपणाय पद्मुद्धृत मुद्वहन्ति मार्गाचल व्यतिकरा कुलितेव सिंधु शैलाधिराज तनया नयेउ नतस्थौ। विकट में 5:85। इस प्रकार प्रदर्शित की गई है। ऐसे बहुत से स्थलों में दोनों कवियों की रचनाओं में कुछ सादृश्य पाया जाता है जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक ने दूसरे का अनुकरण किया है। अब हमें यह विचार करना है कि किसने किसका अनुकरण किया है। नाटककार भास अश्वघोष से अर्वाचीन है क्योंकि भास के नाटकों की प्राकृत भाषा अश्वघोष के व्यवहित प्राकृत से अर्वाचीन है। महाकवि कालिदास भास से अर्वाचीन है क्योंकि उन्होंने अपने मालविकाग्नि मित्र नाटक में प्रथितयशसाम् भाससौमिल्ल ककविपुत्रादीनाम् प्रबन्धानतिक्रम्य वर्तमानकवेः कालिदासस्य कृतौ कथम् बहुमानः। ऐसा लिखकर भासकी अपने से पूर्ववर्ती कवि मान लिया है, अतः कालिदास ने अश्वघोष की रचना का अनुकरण किया, यह बात स्पष्ट हो जाती है। इस स्थिति में भास को तृतीय शताब्दी में रखे तो कालिदास उनसे परवर्ती कवि माने जाएंगे। कालिदास के समय की यही प्राचीन सीमा है। ख बाणभट्ट ने कालिदास को सूक्तियों की निर्गतासु नवाकस्य इस पूर्वोल्लिखित पद से प्रशंसा की है। बाणभट्ट हर्षवर्धन के सभा पंडित और सातवीं शताब्दी के मध्य भाग में थे। इस प्रकार कालिदास की सातवीं शताब्दी से पूर्ववर्ती प्रतीत होते हैं। द्वितीय पुलकेश की प्रस्तर लिपि में कालिदास और भारवी दोनों का इस प्रकार उल्लेख है। सभी जयताम रवि कीर्ति कवितास्थित कालिदास भारवी कीर्ति। द्वितीय पुलकेशी का समय 634 ख्रिस्टाब्द माना जाता है। इस प्रकार महाकवि कालिदास 624 ख्रिस्टाब्द से पूर्ववर्ती प्रतीत होते हैं। सुप्रसिद्ध मीमांसक चूड़ामणि कुमारिल भट्ट ने अपने तंत्र वार्तिक में कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल में वर्तमान सताम ही संदेह पद्येषु वस्तुषु प्रमाणमंतः करण प्रवृत्तयः शाकुंतल रिकॉर्ड में 1:23 इस श्लोकार्ध का उद्धरण किया है। कुमारिल भट्ट सातवीं शताब्दी के माने जाते हैं, इस कारण कालिदास सातवीं शताब्दी से पूर्ववर्ती होते हैं। आलंकारिक कविवर दंडी ने अपने अलंकार शास्त्र काव्यादर्श के प्रथम अध्याय की प्रसादवत प्रसिद्धार्थ मिंदो रिंदी वरद्युति लक्ष्म लक्ष्मी तनोतीति प्रतीति सुभगम वचः इस 45वीं कारिका में महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल में स्थित लक्ष्म लक्ष्मी तनोति जकर में 1:20 इस पद्यांश का उद्धरण लेकर कालिदास को अपने से पूर्ववर्ती कवि मान लिया है। दंडी का समय 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना गया है। इस प्रकार महाकवि कम से कम 6वीं शताब्दी के माने जा सकते हैं। वत्सभट्टी नाम के कवि ने प्राचीन दसपुर और आधुनिक मंदसौर नाम के स्थान के सूर्य मंदिर की प्रशस्ति की रचना की है, जिस पर मालव संवत 529 का उल्लेख किया है। इस प्रशस्ति की भाषा और रीति के साथ कालिदास की रचना का सादृश्य पाया जाता है। वत्सभट्टी ने मेघदूत और ऋतु संहार के बहुत से विषयों का अनुकरण किया है, अतः वत्सभट्टी से कालिदास पहले के हैं यह निश्चित है। पूर्व स्थित इन प्रमाणों से यह प्रतीत होता है कि ख्रिस्ट तृतीय शताब्दी से पीछे और 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के पहले महाकवि कालिदास आविर्भूत हुए थे। फलतः गुप्तवंश के राज्यकाल में भारत की पूर्ण समृद्धि के समय में ही कालिदास के कवित्व की शांतिपूर्ण आनंद धारा प्रवाहित हुई थी। गुप्तवंश के प्रसिद्ध महाराज द्वितीय चंद्रगुप्त की विक्रमादित्य उपाधि थी। उनका राज्यकाल 414 ख्रीष्टाब्द तक रहा। इस प्रकार से द्वितीय चंद्रगुप्त के राज्यकाल को ही कालिदास का प्रादुर्भाव काल माना जा सकता है। यह हुआ गुप्त काल में कालिदास का स्थिति पक्ष। विचार पूर्वक निरीक्षण करने पर यह पक्ष भी निस्तार प्रतीत होता है। गुप्त काल को संस्कृत विद्या का पुनरुत्थान काल कहना ही सर्वसम्मत नहीं है। वास्तव में भारत में संस्कृत विद्या के लिए स्वर्णयुग विक्रमादित्य और भोज का समय ही माना जाता है। अतएव इस मत में केवल काल्पनिकता ही सत्यता नहीं। चीनांशुकमेव केतो शाकुंतल की इस उक्ति से गुप्त राजाश्रित महाकवि कालिदास चीन की दान संपत्ति नहीं भूल सके है, इस कथन में भी कुछ वजन नहीं है। यहाँ पर चीनांशुक पद से चीन देश का वस्त्र यह अर्थ उद्दिष्ट नहीं है। चीन का अर्थ है रेशमी, इस प्रकार चीनांशुक का अर्थ हुआ रेशमी वस्त्र। देखिए मेदिनी कोश में चीन पद का अर्थ चीनो देशांशुक गृह भेदे तंतो मृगांतरे, अर्थात चीन पद देश भेद वस्त्र भेद धान्य भेद तंतु और मृग भेद इनका वाचक है। इसलिए चीनस्य अंशुकम ऐसे विग्रह से षष्ठी तत्पुरुष समास कर चीन देश का वस्त्र ऐसा अर्थ करना अनिवार्य नहीं, बल्कि चीनम च तदन सुकम ऐसे विग्रह से कर्मधारय समाप्त कर रेशमी वस्त्र ऐसा अर्थ करना चाहिए। अथवा चीन पद का अर्थ है मृग विशेष, एक विशिष्ट मृग, उसके रोम से बने हुए वस्त्र की भी चीनांशुक कह सकते हैं। इंदुमती के स्वयंवर में नंदा के कामम निपासंतु जगत में रघुवंश 6:22 इस पद से सर्वप्रथम मगधेश्वर की प्रशंसा की है। इसलिए कालिदास मगधेश्वर चंद्रगुप्त के आश्रित से यह बात प्रमाणित होती है। तो महाकवि ने मेघदूत में अलकापुरी की पर्याप्त प्रशंसा की है, तो वे अलका के निवासी कोई यक्ष क्यों नहीं माने जाएं? इसी तरह कुमार संभव में उन्होंने हिमालय पर्वत की अत्यधिक प्रशंसा की है, इसलिए वे हिमालयवासी कोई किन्नर क्यों नहीं माने जाएं? और रघुवंश में सबके पीछे राजवर्णन प्रसंग में महाकवि ने अयोध्याधीश्वर महाराज रघु और उनके पुत्र युवराज अज की सबसे बढ़कर सुनंदा से प्रशंसा कराई है। तो महाकवि अयोध्या के निवासी और वहाँ के किसी राजा के ही आश्रित क्यों नहीं माने जाएं? इसी तरह आशंका उज्जैनी के विषय में भी की जा सकती है। इसी प्रकार गुप्त मूल प्रत्यंत इत्यादि कई स्थलों में गुप्त पद का उल्लेख करने से कालिदास ने अपने आश्रयदाता गुप्त राजा का संकेत किया। यह तर्क भी वास्तव में संतोषजनक नहीं है, नाचना तो घूंघट क्या। इस उक्ति के अनुसार कालिदास ऐसे महाकवि ने अपने आश्रयदाता राजा के नाम का उल्लेख प्रत्यक्ष रूप से न कर छद्म रीति का आश्रय लिया, यह बात भी सुसंगत प्रतीत नहीं होती है। इसी प्रकार महाकवि कालिदास ने रघुवंश के आसमुद्र क्षितिशा नाम इस पद से समुद्रगुप्त के राज्य विस्तार का संकेत किया है, और रघु के दिग्विजय में तथा मालविकाग्नि मित्र में अग्निमित्र के अश्वमेध यज्ञ में समुद्रगुप्त के कार्यकलाप की प्रतिछाया दिखाई पड़ती है, ऐसा कहना भी कल्पना मात्र है। इसमें कुछ बलवत्तर आधार नहीं। कवि को अपने चरित्र नायक को आदर्श और प्रबल बनाने की काफी छूट है, इस विषय में इसके सिवाय और कुछ नहीं कह सकते। अश्वमेध यज्ञ का सर्वप्रथम अनुष्ठान समुद्रगुप्त ने किया था। इतिहास और पुराण के अनुसार जैसे सगर ने राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, उसी तरह महाकवि अपने ग्रंथ में अग्निमित्र को अश्वमेध के अनुष्ठाता के रूप में प्रदर्शित किया, ऐसी सीधी कल्पना क्यों नहीं की जाती है। चंद्रगुप्त के पुत्र कुमारगुप्त के जन्म के उपलक्ष्य में कुमार संभव रचा गया, यह कहना भी महज कल्पना के अतिरिक्त कुछ जबरदस्त प्रमाण उपस्थित नहीं कर रहा। महाकवि कालिदास बौद्ध आचार्य अश्वघोष के प्रवर्ती हैं, इसलिए दोनों महाकवियों की रचना में कुछ समता के देखे जाने से अश्वघोष से कालिदास ने प्रेरणा पाई है, यह कथन भी प्रमाण से परिपुष्ट नहीं है। दोनों के अवस्थिति काल के विषय में पूर्वापर भाव पीछे कहेंगे, अभी उनकी रचना के विषय में कुछ लिखते हैं। अश्वघोष ईसा की प्रथम शताब्दी के कुषाण राजा कनिष्क के समकालिक एक बौद्ध दार्शनिक विद्वान थे। इनका काव्य गौड़ विषय था और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रधान विषय, इसलिए सामान्य जनता को बौद्ध धर्म में आकृष्ट करने के लिए इन्होंने काव्य रचना की है। इससे इन्होंने साफ साफ लिख दिया है, देखिए, इत्येषा विपुषान्तये नरतये मोक्षार्थ गर्भा कृतिः श्रोत्रणां ग्रहणार्थ मन्य मनसाम काव्योपचारात् कृता यन्मोक्षात्कृत मन्यतत्र हि मया तत्काव्य धर्मात्कृतम् पातुम् तिक्तमिवौषधम् मधुयुतम् सद्यम् कथम् स्यादिति सायेणालोक्य लोकम् विषयरति परम् मोक्षात्प्रतिहितम् काव्यव्याजेन तत्त्वम् कथितमिह मया मोक्षः परमिति तद्बुद्ध्वा श्रामिकम् यत्तदवहितमितो ग्राह्यम् न ललितम् पांसभ्यो धातुजेभ्यो नियतमुपकरम् चामीकरमिति सौंदरानंद विकट में 1863-64। अश्वघोष की काव्य कृतियां प्रामाणिक रूप से चार ही मानी गई हैं, एक बुद्धचरित, दूसरा सौंदर नंद, तीसरा गांडी स्रोत गाथा और चौथा सारिपुत्र प्रकरण। इनमें पहले के दो प्रबंध महाकाव्य हैं, तीसरी रचना गीति काव्य और चौथा रूपक है। महाकवि कालिदास का मुख्य विषय था कवित्व प्रदर्शन। किसी बाल के प्रचार की दृष्टि से उन्होंने काव्य का मार्ग नहीं पकड़ा था। कला कला के लिए के समान इनका कवित्व अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए न कि किसी धर्म के व दार्शनिक तथ्य के प्रचार के लिए तात्पर्य यह नहीं है। कालिदास की कृति में धर्म का तथा दार्शनिक तथ्य का वर्णन नहीं है, पर्याप्त मात्रा से है, पर आनुषंगिक रूप में वह भी प्राकरणिक मर्यादा का अवलंबन करने के साथ। अब दो महाकवियों की रचना क्षमता के कारण किसी की कृति मौलिक और किसी की अनुकृति मूलक है, इस पर विचार करना है। वन विहार के लिए सिद्धार्थ के बाहर निकलने पर कपिलवस्तु की स्त्रियों की संगार चेष्टाओं का अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र में जो वर्णन किया है, उसकी महाकवि कालिदास ने कुमार संभव में, औषधि प्रस्थ में, वर यात्रा के प्रसंग में शिव जी की और रघुवंश में इंदुमती के वरण के अनंतर आज की यात्रा में स्त्रियों की श्रृंगार चेष्टाओं के वर्णन में समता के विषय में हमें यह कहना है कि अपने नगर में अपने पिता से निरुद्ध प्राय होने पर भी सिद्धार्थ का दर्शन कपिलवस्तु की स्त्रियों के लिए उतना अपूर्व नहीं जितना कि औषधि प्रस्थ में शिव जी का और विदर्भ में राजकुमार अज का दर्शन अपूर्व है। इस कारण महाकवि कालिदास ने स्त्रियों की औसत्य निबंधन श्रृंगार चेष्टाओं का जो वर्णन किया है वह स्वाभाविक और मौलिक तथा अधिक मनोहर है, अतः अश्वघोष ने ही कालिदास का अनुकरण किया है ऐसा प्रतीत होता है। साथ साथ एक बात यह भी है कि महाकवि कालिदास ने उपयुक्त वर्णन में अश्वघोष का अनुकरण किया होता तो अपनी दो दो कृतियों में ब्रैकेट में कुमार संभव और रघुवंश में उनका समावेश करने का साहस नहीं कर सकते थे। इस विषय में यह कहना भी अप्रासंगिक नहीं होगा कि कालिदास की शैली परिमार्जित और आकर्षक है, इसके विपरीत अश्वघोष की अपरिमार्जित है और उतनी आकर्षक नहीं। साथ साथ कई जगह में क्यूत संस्कृति आदि दोषों से भ्रष्ट भी है। अनुकरण आदर्श का होता है, उससे भिन्न का नहीं। इस कारण से भी बौद्ध दार्शनिक अश्वघोष ने ही अपनी रचना में सर्वसाधारण को आकृष्ट करने के लिए महाकवि कालिदास का यत्र तत्र भावापहरण कर लिया है, यह बात हृदयंगम हो जाती है। महाकवि कालिदास अत्यंत निर्भिमान थे, अतः उनमें आत्मश्लाघा लेशमात्र भी नहीं थी। यह बात उनके मंदह कविशः प्रार्थी व्यकट में रघुवंश 1:3 इस श्लोक से जानी जाती है। इसी प्रकार वे अपने से बड़ों की चर्चा करने में भी तत्पर होते थे, यह बात उन्होंने मालविकाग्नि मित्र में प्रसिद्ध यशसाम भाषसौ मिलक कवि पुत्रादीनाम प्रबंधानतिक्रम में वर्तमान कवे कालिदासस्य कृतौ कथम बहुमानः इस वाक्य में दर्शाई है। कालिदास ने अश्वघोष की रचना का अनुकरण किया होता तो वे भास सौ मिलक और कविपुत्र महाकवियों के साथ दार्शनिक अश्वघोष का भी उल्लेख करते। इस प्रकार उनके ग्रंथों में अश्वघोष की चर्चा न होने से कालिदास अश्वघोष के अनुकारी हैं और न पश्चादवर्ती हो हैं, यह बात सिद्ध हो जाती है। इसके सिवाय कालिदास के परवर्ती बाणभट्ट आदि अन्य कवियों ने भी उपजीव्य कवि के रूप में अश्वघोष कहीं भी चर्चा नहीं की है। इस कारण से भी अश्वघोष कालिदास के न उपजीव्य हैं और न पूर्ववर्ती थी, यह बात सिद्ध हो जाती है। अश्वघोष के काव्यों का निरीक्षण करने पर उनमें रामायण महाभारत भगवद गीता आदि बहुत से ग्रंथों का अनुकरण दिखा जाता है, पर कालिदास के काव्यों में ऐसे अनुकरण कम दिखाई देते हैं। इस कारण से अश्वघोष ने ही कालिदास का अनुकरण किया है, यह बात समझ में आ जाती है। इस प्रकार अश्वघोष का समय प्रथम शताब्दी ईस्वी है तो कालिदास का समय उससे पूर्व मानना चाहिए। ब्रैकेट में 3 छठी शताब्दी डॉक्टर भाऊ दाजी प्रोफेसर कर्ण प्रोफेसर मैक्स मूलर और डॉक्टर भंडारकर आदि पुरातत्ववेत्ता विद्वानों ने कालिदास छठी शताब्दी में हुए थे ऐसा निर्णय किया है। इन लोगों का मत है भारतीय जनश्रुति के आधार पर अवलंबित है। कालिदास के सुप्रसिद्ध टीकाकार महोपाध्याय मल्लनाथ जी की मेघदूत टीका के ऊपर निर्भर होकर इन लोगों ने महाराज विक्रमादित्य की सभा में नवरत्न थे इस बात को स्वीकार कर लिया है। प्रख्यात ज्योतिषी वाराहमिहिर विक्रम के नवरत्नों में एक रत्न थे। ज्योतिषाचार्य ब्रह्मगुप्त के खंड खाद्य के टीकाकार अमरराज लिखते हैं, नवाधिक पंच शत संख्या के लखन 509 वाराहमिहिराचार्यो दिवंगतः। इस उक्ति पर विश्वास करने से 587 ख्रीष्टाब्द में वाराहमिहिर की मृत्यु माननी पड़ती है। महाकवि कालिदास भी वाराहमिहिर के समान विक्रम के नवरत्नों में एक रत्न थे। इस कारण कालिदास भी ईसा की 6वीं शताब्दी में थे, यह बात सिद्ध हो जाती है। आचार्य दिंगनांग और धर्मकीर्ति आचार्य असंग के छात्र थे। तिब्बत के रत्न धर्मराज का कहना है कि बुद्धदेव के निर्वाण के 900 वर्षों के बाद आचार्य असंग उत्पन्न हुए थे। अशोक बुद्ध निर्वाण के 300 वर्षों के अनंतर हुए थे। अशोक का राज्यकाल ख्रीष्ट पूर्व 249 से 212 तक माना जाता है। असंग 541 ख्रीष्टाब्द में विद्यमान थे, यह बात प्रमाणित होती है। आचार्य दिंगनांग और निचुल असंग से संभवतः 25 साल छोटे थे। महोपाध्याय मल्लनाथ ने कालिदास के मेघदूत के पूर्व मेघ स्थित स्थानादस्मात् सरस निचुला दुत्पतो दंगमुखखम दिंगनागानाम पथि परिहरण स्थूल हस्तावलेपान इस श्लोकार्ध की टीका में निचुल और दिंगनांग पद में श्लेष बतलाया है। उनका कहना है कि इसमें कालिदास के प्रतिद्वंदी दिंगनांग का और बंधु निचुल का नाम ध्वनित है। दिंगनांग वसुबंधु के भी छात्र थे। आचार्य वसुबंधु समुद्रगुप्त के समय में थे। न्यायाचार्य उद्योतकर ने दिंगनांग के मत का खंडन करके न्यायभाष्य पर न्यायवार्तिक की रचना की है। महाकवि वसुबंधु ने अपनी वासवदत्ता में न्यायस्थिति मियोद्यतकर स्वरूपाम इन पदों में उद्योतकर का नाम और बौद्ध संगति मिवालंकार भूषिताम इन पदों से धर्मकीर्ति के बौद्ध संगति नामक ग्रंथ का उल्लेख किया है। इसी समय उज्जैनी में विक्रमादित्य उपाधि को धारण करने वाले राजा थे। इस प्रकार कालिदास उन्हीं विक्रमादित्य के राज्यकाल में एक रत्न के रूप में विद्यमान थे, यह बात प्रमाणित होती है। विचार पूर्वक निरीक्षण करने पर यह सिद्धांत भी केवल कल्पना की भित्ति पर आश्रित प्रतीत होता है। इस विषय को हम सिद्धांत पक्ष में उपस्थित करेंगे। विक्रम की प्रथम शताब्दी भारत की अत्यंत प्रचलित जनश्रुति के अनुसार महाकवि कालिदास संवत्सर के प्रवर्तक मालवाधीश विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक रत्न थे। नहमूला जनश्रुति इस उक्ति के अनुसार और निम्नलिखित तर्कों के आधार पर हम इस मत को अमूलक नहीं कह सकते हैं। यूरोप के विद्वानों में सर विलियम जॉन्स ने सर्वप्रथम इस मत को स्वीकार किया था, परंतु उनके परवर्ती फार्गुसन आदि विद्वानों ने इसे भ्रांतिग्रस्त प्रतिपादित किया है। सबसे पहले फार्गुसन ने ही इस मत का प्रचार किया कि उज्जैनी के महाराज विक्रमादित्य ने शकों को भारत से 544 ईस्वी सन में खदेड़कर उक्त विजय के 600 साल पूर्व संवत्सर का स्थापन किया। उनके मत में ख्रिस्ट के 57 वर्ष पूर्व विक्रमादित्य नाम के कोई राजा थे ही नहीं, इसलिए ख्रिस्ट पूर्व विक्रम संवत्सर की प्रवृत्ति की बात ही नहीं उठती। मैक्स मूलर ने फार्गुसन के पूर्वोल्लिखित मत का ही अवलंबन कर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि ख्रिस्ट की 6वीं शताब्दी से ही संस्कृत के काव्यों का परम उत्कर्ष हुआ और महाकवि कालिदास उसी समय प्रादुर्भूत हुए हैं। प्रोफेसर फ्लिट और हर्नल ने गवेषणा कर फार्गुसन के पूर्वोक्त मत का खंडन किया है। उन्होंने महाकवि कालिदास के ज्योतिर्विदाभरण नामक ज्योतिष ग्रंथ के एक श्लोक से प्रतिपादित किया है कि ख्रिस्ट से 57 वर्ष पूर्ववर्ती विक्रमादित्य के नवरत्नों में कालिदास भी एक रत्न थे। वह श्लोक यह है, धनवंतरिक्षप रणाकामर सिंह संतु वेताल भट्ट घट खर पर कालिदासाः ख्यातो वराह मिहिरो नृपते सभायाम् रत्नानि वै वर रुचिर नव विक्रमस्य अर्थात धन्वंतरी प्रकट में आयुर्वेद शास्त्र के विद्वान छपनक अमर सिंह प्रकट में सुप्रसिद्ध के कोशकार शंकु बेताल भट्ट घट खरपर कालिदास प्रकट में साहित्य संस्कृत के विश्वविख्यात महाकवि वराह मिहिर प्रकट में ज्योतिष शास्त्र के उद्भट विद्वान और वररुचि ये विद्वान महाराज विक्रम की सभा के नवरत्न है परंतु यूरोप के कतिपय विद्वान ज्योतिर्विदाभरण को कालिदास की कृति नहीं मानते हैं। उन लोगों का कथन है कि किसी अर्वाचनीय विद्वान ने उसकी रचना कर कालिदास नाम का प्रचार कर दिया क्योंकि ज्योतिर्विदाभरण ज्योतिष का ग्रंथ है। उसके ग्रह आदि की जो अवस्था सूचित होती है उससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि वह ग्रंथ 15वीं शताब्दी के बाद रचित हुआ है परंतु उक्त ग्रंथ के अवाचीन होने पर भी विक्रम की सभा में नवरत्न थे और उनमें अन्यतम रत्न कालिदास थे। यह बात 11वीं शताब्दी के धाराधिपति भोज के समय भी प्रचलित थी। प्राध्यापक स्वर्गीय सरदार रंजन राय और वाणी विलास ग्रंथमाला से प्रकाशित अभिज्ञान शाकुंतलम के मुखबंध में जेके सुब्रह्मण्य नाम के विद्वान ने भी इस मत का समर्थन किया है। प्राध्यापक राय का कथन है कि मार्शल को इलाहाबाद के निकट भीटा में जो मेडालियन प्राप्त हुआ उसमें दुष्यंत का तपोवन प्रवेश मृगवध न करने के लिए ऋषि शिष्यों की प्रार्थना और ऋषि कन्याओं का आलवाल विकट में क्यारी पूर्ण करना इत्यादि अभिज्ञान शाकुंतल के प्रथम अंक में अवस्थित दृश्यों का चित्र विद्यमान है। इससे विदित होता है कि शुंग वंश के समय में कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतल प्रसिद्ध था। अध्यापक जेके सुब्रह्मण्य ने कालिदास के मालविकाग्र मित्र नाटक से जो सूक्ष्म प्रमाण उपस्थित किया है वह भी खंडनीय नहीं है। उनका कहना है कि नाटकम ख्यातवृत्तम ख्यात नाटक के इस नियम का अनुसरण करते हुए प्राचीन नाटककारों ने पुरातन ख्यातवृत्तों का अवलंबन कर अपनी रचनाओं की उद्भावना की है परंतु कालिदास ने इस नियम का उल्लंघन कर जीवित राजा के ख्यात वृत्त का अवलंबन कर मालविकाग्नि मित्र नाटक की रचना की है। महाकवि ने अपनी नवीन कृति की ओर संकेत करते हुए लिखा है कि पुराण मित्यव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नव मित्यवद्यम संत परीक्षांतर भजन्ते मूढ़ पर प्रत्यय बुद्धि अर्थात काव्य प्राचीन कहकर ही सभी उत्तम नहीं होता और न नवीन कहकर ही सभी निंदित होता है। विद्वान लोग परीक्षा करके प्राचीन व नवीन काव्य में एक का अनुशीलन करते हैं परंतु जो मूर्ख हैं वे दूसरे के पिछलग्गु बन जाते हैं। यहाँ पर पुराण कहकर पुराण ख्यात वृत्त का श्लेष है ऐसा भी कुछ विद्वानों का मत है। इसी प्रकार नाटक के अंत में भरत वाक्य कहकर महाकवि ने लिखा है आशास्यमीति विगम प्रभृति प्रजानाम संपत्स्यते न खलु गोप्तरी नाग्निमित्रे अर्थात राजा अग्निमित्र के संरक्षकत्व में प्रजाओं का इति विकट में अतिवृष्ट और अनावृष्टि विकट बंद आदि भय नहीं होगा ऐसी आशा की जाती है। यहाँ पर अग्निमित्रे गोप्तरी इस भावलक्ष सप्तमी के प्रयोग से जाना जाता है कि कालिदास के समय में राजा अग्निमित्र जीवित थे। ये अग्निमित्र शुंगवंश के पुष्यमित्र के पुत्र थे और इनका काल ख्रिस्ट से पूर्व प्रथम शताब्दी मानी जाती है। यह बात इस प्रमाण से भी सिद्ध हो जाती है कि शाकुंतल में अंगूठी चुराने के अपराध में धीवर पर प्राण दंड की व्यवस्था दी जाने वाली थी वह मनु वशिष्ठ और आपस्तंभ की स्मृतियों के अनुसार है। पूर्वोक्त धर्म शास्त्रों की व्यवस्था शुंग काल में मानी जाती थी इसके विपरीत गुप्त काल में बृहस्पति और याज्ञवल्क्य स्मृति के मान्यता थी जिसके अनुसार चोरी करने पर वैसे कठोर दंड का विधान नहीं था। इस तरह कालिदास के नाटक में उस समय सम्मत मनु वशिष्ठ बोधायन और आपस्तंभ आदि के स्मृति ग्रंथों के अनुसार विधवा को पति का दाएं भाग नहीं मिलता इसके विपरीत गुप्त काल में याज्ञवल्क की स्मृति की मान्यता थी, जिसके अनुसार विधवा पति के दाएं की अधिकारिणी हो जाती थी। इन दो प्रमाणों से भी कालिदास सत्ता गुप्त काल में न होकर ख्रिस्ट पूर्व ही थी, ऐसा निश्चय हो जाता था। इस प्रकार कालिदास ख्रिस्ट पूर्व प्रथम शताब्दी में हुए थे, यह बात भी प्रमाणित हो जाती है। अब ख्रिस्ट 57 वर्ष पूर्व विक्रमादित्य नाम के कोई राजा ही न थे। इस बात पर विचार करना है, यूरोप के विद्वानों ने विक्रम की 5वीं शताब्दी के द्वितीय चंद्रगुप्त को ही विक्रमादित्य मानकर उन्होंने 600 साल पहले का अपना संवत्सर विक्रम संवत्सर के रूप में चलाया, ऐसी निराधार कल्पना की है। चंद्रगुप्त ने अपने समय का संवत्सर न चलाकर 600 साल पहले का संवत्सर क्यों चलाया, इस पर कुछ भी प्रमाण नहीं दिया। प्रथम शताब्दी के सातवाहन ने अपनी गाथा सप्तमी में संवाहन सुहसतो शीर्ण देंतेन तुह करे लखम चरणेण दिक्कमा इतचरणम अनुशिक्षियम तिस्सा देखने में 5:64 संवाहन सुखर सतो वितेन ददता तव करे लाक्षाम चरणेन विक्रमादित्य चरितम अनुशिक्षितम तस्याह। इस प्रकार से विक्रमादित्य की चर्चा की है। वास्तव में सातवाहन से उद्दिष्ट विक्रमादित्य ही कालिदास के आश्रयदाता प्रतीत होते हैं। इसी प्रमाण से 6वीं शताब्दी में विद्यमान वराहमिहिर से कालिदास की समकालिकता की बात भी कट जाती है। इसी तरह तिथौच ज्यामित्र गुणान्वितायाम विकर्ण में कुमार सातिक इस पद में ज्यामित्र पद का प्रयोग करने से कुछ लोग कालिदास को द्वितीय चंद्रगुप्त के समयवर्ती सिद्ध करते हैं। उनका कहना है कि ज्यामित्र पद यूनानी डायमेट्रन पद का हो परिवर्तित रूप है, परंतु ईसा से 500 वर्ष पूर्व बुधायन ने भी अपने गृह सूत्र में इस पद का प्रयोग किया है। इस कारण से यह मत भी भ्रांतिग्रस्त है। डॉक्टर राजबली पांडेय ने अपने विक्रमादित्य नामक ग्रंथ में अनेकानेक प्रमाणों के आधार पर यह सिद्ध किया कि ख्रिस्टपूर्व 57 वर्षों में विक्रमादित्य नाम के राजा थे और उनकी उपाधियां विषमशील साहसांक और शाकारी थी तथा उन्हीं की सभा में महाकवि कालिदास थे। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कालिदास की अनुपम कवित्व शक्ति के कारण उनके नाम का कालांतर में उपाधि के तौर पर ग्रहण होने लगा था। जैसे कि 9वीं शताब्दी के महाकवि राजशेखर ने कहा है, एकोपजीयते हंत कालिदासो न केनचित श्रृंगारे ललितोद्गारे कालिदासत्रयी किमु। राजशेखर के समय तक ही कालिदास नाम से 3 कवि प्रख्यात हो चुके थे। 11वीं शताब्दी के राजा भोज के समय परिमल व पद्मगुप्त नाम के किसी कवि ने भी कालिदास नाम की उपाधि को धारण कर लिया था। जैसे विक्रमादित्य के आश्रित कालिदास नाम व उपाधि से युक्त 4 कवि प्रख्यात हुए, वैसे ही कालिदास के आश्रयदाता विक्रमादित्य के नाम व उपाधि से 4 महाराज इतिहास में प्रसिद्ध हुए थे। उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य जिन्होंने ख्रिस्ट से 57 वर्ष पूर्व विक्रम संवत की स्थापना की है। 2 चंद्रगुप्त द्वितीय प्रकरण में 375 से 414 ईस्वी। 3 कुमारगुप्त प्रथम 414 से 425 ईस्वी, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र थे। 4 काश्मीर के विक्रमादित्य विकट में 500 ईस्वी। इन 4 विक्रमों में पूर्वोक्त प्रमाणों से और भारतीय परंपरा से विक्रमादित्य नाम वाले पहले राजा के आश्रित महाकवि कालिदास थे, यह बात सिद्ध होती है। पिछले 3 नरेश विक्रमादित्य उपाधि वाले थे, इस बात में भी भारतीय प्रचलित जनश्रुति प्रसिद्ध है। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतल नाटक की प्रस्तावना में सूत्रधार नटी से कहता है, आर्य रसभाव दीक्षा गुरु विक्रमादित्यस्या भिरूपभूयिष्ठा परिषदियम अस्याम च कालिदास ग्रसित वस्तुना नवेना विज्ञान शाकुंतला नामधेयेन नाटके नोपस्थ सम्यस्माभिः। इस प्रसंग में महाकवि ने अपने आश्रयदाता का नाम स्पष्ट रूप से दिखलाया है। पूर्व काल में आजकल की तरह उपाधि का नाम के तौर पर प्रयोग नहीं होता था, कारण यहाँ पर विक्रमादित्य पद से संवत्सर प्रवर्तक श्रेष्ठ पूर्व काल में विद्यमान राजा विक्रमादित्य नामक राजा का ग्रहण करना चाहिए। इन्हीं विक्रमादित्य ने भारत से सकवा साथियनों को खदेड़ा था, अतएव विक्रमादित्य उपाधि वाले चंद्रगुप्त नामक राजा की कल्पना यहाँ अनुपन्न है। इसी तरह महाकवि ने विक्रमोवर्षी त्रोटक के भी नामकरण में प्रतीक के रूप में अपने आश्रयदाता विक्रम का संकेत किया है। कालिदास ने इसी प्रकार विक्रमोवर्ती त्रोटक में इंद्र के स्थान पर महेंद्र शब्द का प्रयोग कर अपने आश्रयदाता विक्रमादित्य के पिता महेंद्रादित्य का संकेत किया है। ऐसे ही अनुज से कह खलु विक्रमालंकार कवि ने भी ऐसा लिखा है। इसी प्रकार अभिनंद कवि ने रामचरित में ख्यातिम कामपि कालिदास कृतयो नीता साकारातिना लिखकर साकाराति विक्रमादित्य को कालिदास के आश्रयदाता के रूप में प्रतिपादन किया है। इन सब प्रमाणों से कालिदास विक्रमादित्य के समकालिक थे, यह बात पूर्ण रूप से प्रमाणित हो जाती है। कालिदास का समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व मानने में उनके किए हुए कुछ प्रयोग भी सहायक सिद्ध होते हैं। महाकवि कालिदास के कुछ ऐसे पदों के प्रयोग मिलते हैं जो कि केवल वेद में देखे जाते हैं, लोक में नहीं। जैसे कि त्रियंबकम संयमिनम ददर्श विक्रम कुमार संभव 344, यहाँ पर लोक प्रयोग के अनुसार त्रियंबक होना चाहिए था, त्रियंबक नहीं। इस तरह आस आदि प्रयोग भी कालिदास से मिलते हैं। पाणिनि के अष्टेरभु विक्रम में 252, इस सूत्र के अनुसार अस धातु के लिट में भू आदेश होकर बभु होना इष्ट था। इसी प्रकार महाकवि ने तम पातयाम प्रथम मास पपात पश्चात विक्रम में रघुवंश 961, रघुवंशयाम नो नहुषम चकार विकट में रघुवंश 1236 ऐसे प्रयोग किए थे। इन दोनों चरणों में क्रम से पाणिनि व्याकरण के अनुसार पात्यामास और रघुवंशयान चकार इस प्रकार अव्यवहित रूप से ऐसे प्रयोग इष्ट हैं। कालिदास के ऐसे प्रयोग भी ख्रीष्ट पूर्व प्रथम शताब्दी में उनकी सत्ता का द्योतन करते हैं, जबकि पाणिनि व्याकरण के प्रयोग पूर्ण रूप से प्रचलित नहीं हुए थे। इसी प्रकार कालिदास ने अपने नाटकों में मागधी प्राकृत का व्यवहार किया है, जिसका ईसा के पूर्व काल में ही प्रयोग मिलता है। इन सब प्रमाणों की पर्यालोचना से गुप्त काल में कालिदास की सत्ता नहीं थी, बल्कि ख्रीष्ट पूर्व विक्रम के समय में थी, यह बात व्यक्त रूप से विदित हो जाती है।